3.35.
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अपने नियत कर्मों को दोष पूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आप मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत महत्व का है। अपने नियत कर्मों को
दोष पूर्ण ढंग से
संपन्न करना भी
अन्य के कर्मों को
भली भांति करने से
श्रेयस्कर है।
स्वीय कर्मों को करते हुए
मरना
पराये कर्मों में
प्रवृत्त होने की अपेक्षा
श्रेष्ठतर है,
क्योंकि
अन्य किसी के
मार्ग का
अनुसरण
भयावह होता है।
ओम ज्ञानदिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। 3.35। हमने 33 और 34 में क्या देखा? 3.33, 3.34, 3.35 तीनों श्लोक एक दूसरे के एकदम पूरक है। हमने पहले भी कहा था कि ये दोनों श्लोक तीनों श्लोक एकदम पूरक है। 33 में भगवान ने क्या कहा था? प्रकृतेर ज्ञानवापी। क्या कहा था? ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुकरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासनाओं को, वासनाओं के माध्यम से अपने कार्यों को प्रकट करता है, या कार्य के माध्यम से अपनी वासनाओं को प्रकट करता है। जैसे एक्शन, इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज, ये सब चर्चा हमने उस समय की थी, इसलिए उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट ये कहा गया था कि भगवान ने कहा था समस्त संसार, समस्त प्राणी अपने स्वभाव के वश में है। किसके वश में है? स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, बराबर है, राइट? सारा संसार, सारे प्राणी अपने ही स्वभाव के वश में है, यही परेशानी है सबसे बड़ी है? अपने स्वभाव के वश में होने के कारण अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, है ना? तो प्रश्न ऐसा था 34 में कि जब सारे प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं तो इसको पाप कैसा समझे, ये बंधन कैसा हो सकता है? तो स्वभाव ही है ना, स्वभाव के अनुसार कोई कार्य करेगा तो उसमें गलत क्या है? तो उसमें क्या है? राग और द्वेष। स्वभाव अर्थात राग और द्वेष। तो फिर क्या चर्चा हुई? कार्य यदि करना है तो सिद्धांत के आधार पे होना चाहिए, स्वभाव के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ था स्वभाव और सिद्धांत, है ना? तो क्या होना चाहिए? सिद्धांत के आधार पे कर्म करना चाहिए। स्वभाव के आधार पे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें क्या कहा गया था इस श्लोक में, राग द्वेषो व्यवस्थितः। उसमें कहा गया था कि अपने इंद्रियों में ही राग और द्वेष को व्यवस्थित रखा गया है, व्यवस्थितः, इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो राग और द्वेष इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होने के कारण इंद्रिया क्या करती है? राग और द्वेष के अनुसार ही कार्य करती है ना, क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। और राग और द्वेष के आधार पर जब हम कार्य करते हैं तो गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, तीन गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं। और जब हम गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे बंधन में फंस जाते हैं, पाप कर्मों के बंधन में, अनेकों प्रकार के कर्मों के बंधन में हम फंस जाते हैं कि नहीं? वास्तविक बात है नहीं है? तो फिर हमने सारे इंद्रियों की चर्चा की थी, त्वचा, नेत्र, नासिका, कर्ण, जीवा, सारे ज्ञान इंद्रियों की सारी सभी चर्चा उस समय हमारी हुई थी, है ना? तो इस प्रकार से ये सारे इंद्रिया क्या करती है? जीवात्मा रूपी यात्री को क्या करती है? लूटती है, लूट लेती है पूरी तरह से, है ना? ये तो संसार रूपी जंगल में फंस गया है, जीवात्मा इतने घने जंगल में आ चुका है, संसार रूपी बड़ा घना भयंकर जंगल है, इसमें फंस गया है। और इसमें लुटेरे भी साधारण है नहीं, भयंकर लुटेरे डाकू है। और वो डाकू कौन है? कौन है सारे डाकू? ये आपको लास्ट टाइम हमने बताया था, राग और द्वेष, आसक्ति अर्थात राग अर्थात प्रिय, और द्वेष अर्थात अप्रिय, ये दोनों डाकू है। कभी तो हमको अप्रिय चाहिए, अप्रिय नहीं चाहिए उसके उसके कारण हम उद्विग्न हो जाते हैं, और कभी कभी प्रिय चाहिए इसके कारण हम उद्विग्न हो जाते हैं। दोनों उद्विग्नता का कारण है, प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष, ये दोनों भयानक डाकू है। ये क्या कर रहे हैं? जीवात्मा रूपी यात्री को घने जंगल में लूट रहे। क्या लूट रहे ये यात्री के पास क्या है? ज्ञान, ये डाकू क्या लूटते हैं? ज्ञान लूटते हैं, ये ज्ञान को लूट लेते हैं, ऐसे कुखार डाकू है। आत्मज्ञान है ये जीवात्मा, आत्म, आत्म के पास क्या है? आत्मज्ञान। और राग और द्वेष के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति का आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। और पिछले श्लोक में इसलिए भगवान ने क्या कहा था, इसलिए राग और द्वेष अर्थात स्वभाव के आधार पर कर्म मत कीजिए, क्योंकि वो राग और द्वेष वाले होते हैं, सिद्धांत के आधार पर कर्म। यहां तक क्लियर है? तो स्वभाव क्या है, सिद्धांत क्या है, इसको फिर आगे इस श्लोक में अब भगवान और क्लियर कर रहे हैं। अब आपको और कंफ्यूजन ये हो सकता है, क्योंकि इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िए तात्पर्य, सॉरी ट्रांसलेशन, तो आपको पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा और इस श्लोक में जो भगवान कह रहे इसमें क्या दिखता है, जरा बताइए। इसमें क्या कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्म अर्थात स्वाभाविक कर्म, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। कौन से कर्म करने के लिए कह रहे भगवान, स्वभाव के अनुसार कर्म। पिछले श्लोक में क्या कहा, ये क्या सिखा रहे भगवान हम गड़बड़ लग रही क्या इसलिए हम कहते हैं कि एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा स्वभाव के अनुसार कर्म न करें, और यहां पे क्या कह रहे हैं, स्वधर्म के अनुसार कर्म। अब आप मुझे समझाइए, भाव स्वभाव और स्वधर्म दोनों जगह स्व कॉमन है, वहां स्व था यहां भी स्व है, स्व स्व कॉमन, स्व को छोड़ दीजिए, भाव और धर्म क्या है?
भाव यानी प्रकृति के गुणों के बारे में, और धर्म के यानी जीवन स्वरूप है, कृष्ण आत्मा स्वरूप के बारे में सिद्धांत आ जाता है।
पर भगवान हाव ग्राही जनार्दन स्वभाव और स्वधर्म, भगवान पहले कहे स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए, और इस श्लोक में कह रहे स्वधर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। स्व कॉमन हो गया, अभी भाव और धर्म बताइए। भाव के अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, पर कौन से स्थान में हम है, धर्म के स्थान हमारे में धर्म प्रवृत्त है कि भाव प्रवृत्ति है निहित कर्म, उसको धर्म कहा गया बराबर। तो निहित कर्म अर्थात कौन से कर्म, भगवान को शरणागत होकर जो कर्म किए जाते हैं, अर्थात जिसमें मैं मेरा मुझे ये नहीं है। तीन जो मुख्य बातें हैं कौन सी, आई एम द बेस्ट, आई एम द डूअर एंड आई ओनली एग्जिस्ट, ये समझ के जो कर्म किए जाते हैं वो समर्पित होकर कर्म किए नहीं है। इन शॉर्ट एकदम एक वाक्य में आसानी से समझने के लिए हम चर्चा करते हैं, भाव के आधार पर कर्म करना अर्थात मन के आधार पर कर्म करना, मन जैसा बोलेगा वैसे कर्म करना। मन क्या बोलता है, चलो अभी सिनेमा देखते हैं, चलो अभी T20 क्रिकेट देखते हैं, मन बोलता है। राग और द्वेष मन की दो फंक्शन, विशेष फंक्शन है, कौन से, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग एंड द्वेष, इसके आधार पे जो कर्म करता है वो मन करवाता है, अर्थात मन का स्वभाव क्या है, मन का फंक्शन क्या है, भाव, और भाव किस पे आधारित होता है, राग और द्वेष पे आधारित होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आपका भाव मुझे दे दो आपके अंदर जो है ना, मन मना भव मत भक्तो, मन में जो भाव है वो सब मेरे चरणों को समर्पित कर दो। अर्थात राग द्वेष कुछ जो कुछ भी अंदर भरा हुआ है उसको क्या करो, खाली करो। ये डस्टबिन है, इसको क्या कर दो, डस्टबिन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो उसमें कुछ जाएगा ना। उसमें कुछ अच्छा भरना है तो पहले जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है इसको खाली करना पड़ेगा, तभी जाके कोई अच्छी चीजें उसमें डाल सकते है कि नहीं। सो मन का फंक्शन क्या है, मन का फंक्शन है भाव। कौन सा भाव, राग और द्वेष पे आधारित, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधारित फंक्शन है मन। सो भगवान क्या कह रहे, स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करो, स्वधर्म के अनुसार कर्म करो। स्वधर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदात, स्व अर्थात आत्म, स्व अर्थात मैं, स्व आत्म। धर्म क्या है, धर्म है जो भगवान को समर्पित होके कर्तव्य किया जाता है उसको धर्म कहते हैं, उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं। और उसी को क्या कहा गया है इसमें ट्रांसलेशन में, स्वीय कर्म। नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, सब ठीक चल रहा है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, स्वभाव और स्वधर्म में सिद्धांत क्या हुआ फिर इसमें, इसमें सिद्धांत क्या हुआ, स्वधर्म, स्वधर्म सिद्धांत, स्वभाव नहीं स्वधर्म। हम बोलते क्या करें हमारा स्वभाव ही है, तो भाई बदलो ना, क्योंकि ये तो राग और द्वेष के आधार पे है। इसका आधार क्या है, राग और द्वेष, बदलना पड़ेगा स्वभाव, बदलना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, और उसको थोड़ा सा आगे एकदम एप्लीकेबल लैंग्वेज, अभी की भाषा में सभी को समझे ऐसी भाषा में बोला जाए, तो अपने मन को मत फॉलो कीजिए, अपने मन की मत सुनिए, अपने बुद्धि की सुनिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम त्वम, भगवान कह रहे मैंने बुद्धि योग इसलिए दिया है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो, हैं? किसलिए दिया है बुद्धि योग, किसलिए दिया है, अर्थात बुद्धि योग का उपयोग धर्म को अच्छे से समझने के लिए होगा ना, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्वभाव और स्वधर्म, और व्यवहारिक भाषा में बोला जाए तो मन की चिंता मत करो, मन के अनुसार कार्य मत करो, मन मानी मत करो। क्या मत करो, क्या करो, क्या करो, बुद्धि की सुनो, मन की न सुनो बुद्धि की सुनो। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं ददामि बुद्धि योगम त्वम, भगवान कहते हैं कि मैंने आपको बुद्धि दी है और आपको मन को मुझे देना है, लेन देन है ना, लेन देन है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं आपका मन मुझमें समर्पित करो, और भगवान कहते हैं मैंने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, हमको भगवान को अपना मन देना है, लेन देन भगवान के और हमारे बीच में। अर्थात भगवान ये चाहते हैं कि मन की मत सुनो, बुद्धि की सुनो। क्यों बुद्धि की सुनो, क्योंकि बुद्धि योग है। और इसके पहले दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की थी, बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बुद्धि के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो शॉर्ट में हमने यही चर्चा की है यहाँ पे कि बुद्धि योग चाहिए, बुद्धि का सुनना है, उसी को धर्म कहते हैं। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कैसे, श्रेयान स्वधर्म, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म स्वानुधिष्ठिता, अर्थात पर धर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान करने से अच्छा है अपने धर्मों का दोष पूर्ण पालन करें, ऐसा इसमें भगवान कहते हैं। यहां पे महत्व का शब्द है श्रेय, सबसे पहला शब्द क्या है, श्रेयान, श्रेय। 2.7 में अर्जुन ने पूछा था, कहा था कार्तिक दोषो कृत स्वभाव शिक्षा मित्वाम धर्म समूह चेता यश्रेय यश्रेय श्यानिश्चितम ब्रूहितम यश्रेय श्यानिश्चितम, अर्थात अर्जुन ने पूछा था श्रेय के प्राप्ति के लिए हे कृष्ण मुझे निश्चित मार्ग बताओ, क्या पूछा था, श्रेय के प्राप्ति के लिए हे कृष्ण मुझे गारंटेड बात बताओ, गारंटी वाली बात बताओ, निश्चित मार्ग बताइए श्रेय के प्राप्ति के लिए। अब इसके उत्तर में भगवान यहां कह रहे हैं कि स्वधर्म के द्वारा ही श्रेय की प्राप्ति होती है। उत्तर मिल गया, मिला कि नहीं मिला, अर्जुन ने पूछा था श्रेय प्राप्ति का मुझे निश्चित मार्ग बताइए, भगवान ने इस श्लोक में उत्तर दिया स्वधर्म ही श्रेय प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। इसके उत्तर में भगवान ये कहते हैं, परंतु आगे क्या कहते हैं, यदि स्वधर्म आपके पास नहीं है तो पर धर्म है, और पर धर्म क्या है, तो भगवान इस श्लोक में दोनों बातें बता रहे हैं, विधि और निषेध। शास्त्र में कहते हैं विधि, विधि अर्थात जो पालन करना है, और निषेध अर्थात जो नहीं करना है, विधि और निषेध। भगवान ने इस श्लोक में विधि और निषेध दोनों बातें अच्छे से समझाई है। पहली विधि क्या है, स्वधर्म का पालन करो। निषेध क्या है, पर धर्म भयावह, पर धर्म रखोगे तो क्या होगा, भयावह है, उसका त्याग करो। इस प्रकार से दोनों बातें भगवान ने इस श्लोक में कही है। स्वधर्म की क्या व्याख्या है, इसको ठीक से यदि हम समझे तो स्व अधिक धर्म, दो शब्द इसमें है, स्व अधिक धर्म। स्व अर्थात मूल, एकदम मूल स्व, आत्म जड़ आत्म मूल है ना, एक शब्द है मूल, और फिर धर्म, धर्म धर्म अर्थात भगवान यहां पे समझा रहे हैं धर्म अर्थात कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल स्वधर्म, मूल मुख्य कर्तव्य। आगे और जैसे हम जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो 18वें अध्याय में पहुंचेंगे, और 18वें अध्याय तक जब तक हम पहुंचते हैं तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्योंकि तब तक आप तो इसको आचरण में लाएंगे। 18वें अध्याय में भगवान और विस्तृत रूप में इसको कहेंगे, 43-44 में, 18.43-18.44 इसमें भगवान स्वधर्म की व्याख्या बता रहे हैं। स्वधर्म क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये धर्म क्या है, इनके धर्म कैसे होते हैं, हम अभी इसको विस्तृत रूप से नहीं समझेंगे क्योंकि ये विषय नहीं है, परंतु ब्राह्मण के 9 प्रकार के धर्म होते हैं। कितने प्रकार के धर्म ब्राह्मण को पालन करना है, 42-43-44 इसमें विस्तृत रूप में हो आगे आएगा, 18.42-18.43-18.44 ब्राह्मण के 9 प्रकार के धर्म होते हैं, क्षत्रिय के 7 प्रकार के धर्म होते हैं, वैश्य के 3 प्रकार के धर्म होते हैं, और शूद्र के 1 प्रकार का धर्म। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके कर्तव्य इनके गुण और कर्म के अनुसार इनके धर्म का व्याख्या किया गया है और उसको रिफाइन करें तो जैसे ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण में सहनशीलता होनी चाहिए टॉलरेंस सहन करने की क्षमता होनी चाहिए ब्राह्मण यदि भी कभी कभी ब्राह्मण चिढ़ जाते हैं तो
ब्राह्मण नहीं
ब्राह्मण दो ही कार्य करते
कौन से
या तो आशीर्वाद देते हैं या तो श्राप देते हैं ब्राह्मण के पास देने के लिए दूसरा कुछ नहीं परंतु क्योंकि वो सहनशील होता है इसलिए श्राप देते ही नहीं रियल ब्राह्मण दे सकते हैं शास्त्र में कई उदाहरण है कई बार श्राप दिया गया परंतु ब्राह्मण का मूल स्वभाव सहनशीलता है मूल स्वभाव धर्म स्वधर्म सहनशीलता क्षत्रिय का धर्म है वीरता है धर्म रक्षा के लिए भगवत सेवा के लिए युद्ध करना अधर्म का नाश करना और भगवान को प्रसन्न करना भगवान की प्रसन्नता के लिए वीरता का प्रदर्शन करना अपने स्वयं के लिए वीरता का प्रदर्शन नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए वीरता का प्रदर्शन करना वैश्य का क्या धर्म है वैश्य का धर्म है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कुछ भी फैसिलिटीज व्यवस्थाएं चाहिए वो सब वो प्रदान और दूसरा प्रमुख धर्म मुख्य धर्म वैश्य का है गो सेवा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसका आयोजन करना धर्म प्रसार कार्य का आयोजन करना गो सेवा ये वैश्य का धर्म है और शूद्र का धर्म है अपनी सेवा में तत्पर रहना ये चार धर्म आप इसको विस्तृत रूप में 18वें अध्याय में पढ़ सकते हैं यह चारों धर्म है चारों व्यक्ति यदि अपने धर्म के अनुसार स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो उनको भगवत प्राप्ति होती है यश प्राप्ति होती है कभी कभी जन्म और कर्म के अनुसार कभी कभी नहीं प्रभुपाद जी कहते हैं जन्म और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का वर्ण निश्चित इसके अनुसार अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और भगवत गीता का भ भी पता नहीं कभी खोल के ही नहीं देखा है बड़ी शर्म की बात होती है जब अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण बहुत अच्छे पढ़े लिखे हाईटेक परंतु भगवत गीता क्या है किसने किसको कही यह भी पता नहीं तो कैसे ब्राह्मण तो ये कैसा स्वधर्म क्षत्रिय एकदम पावर्स है बहुत सारी पावर्स प्राप्त की बहुत सारी शक्ति है बहुत बड़ा समाज है या बहुत बड़ा परिवार है क्षत्रिय बहुत बड़ी शक्ति है उसका उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी वीरता का उपयोग नहीं कर रहे हैं किस लिए कर रहे भ्रष्टाचार प्रताड़ना अत्याचार लूटपाट इसके लिए वीरता दिखा रहे हैं ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता और सहनशीलता भौतिकता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्षत्रिय अपनी वीरता भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वैश्य अपना व्यापार अधर्म का प्रचार करने के लिए कर रहे हैं और शूद्र कदापि सेवा में तत्पर नहीं है कैसे धर्म का रक्षण करो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है गुण और अपने अंदर जो गुण जन्म और कर्म दोनों के अनुसार व्यक्ति के गुण निश्चित होते हैं, व्यक्ति के वर्ण निश्चित होना चाहिए। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसने करना क्या चाहिए? कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? स्वधर्म के अनुसार। परंतु वो होते नहीं है तो वो ब्राह्मण कोई क्षत्रिय भी क्षत्रिय नहीं है, वैश्य भी वैश्य नहीं है, शूद्र भी शूद्र है, फिर है क्या? क्या है? राक्षस। जो भगवान के विरुद्ध चलते हैं, जो धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, वो अधर्मी है, इसलिए उनको राक्षसी प्रवृत्ति के कहा गया है, राक्षसी प्रवृत्ति। इसलिए जन्म और कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित होता है। हमारे पुण्य वैष्णव तत्व सिद्धांत में ही कहा गया, कोई जन्म से क्षत्रिय है लेकिन कर्म वो इतने अच्छे कर रहा है ब्राह्मण के, इसका धर्म क्या? आगे जाके इसकी चर्चा होगी। भगवान तो यहां पे कह रहे हैं कि स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, पर धर्म भया हुआ है। परंतु प्रभुपाल जी कई जगह उदाहरण देते हैं, इसको कैसे समझे, किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जैसे डॉक्टर है, MBA MS डॉक्टर, वो क्या चाहते हैं? अपना पुत्र या अपनी कन्या डॉक्टर ही हो। अब डॉक्टर का पुत्र या डॉक्टर की कन्या डॉक्टर ही होगी क्या? क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे होगी तो क्या होगा? आप उनके पास जाएंगे या बीमार पड़ गए जा सकते? डर लगेगा, भय होगा, है भयभीत हो जाएगी ना, पर धर्म भया हुआ। उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार किया है, भया हुआ है। परंतु इस कलयुग की ये भयंकर बड़ी प्रताड़ना है कि क्या सोचते हैं, डॉक्टर का पुत्र है तो वो डॉक्टर ही होना चाहिए, भले ही उसमें उस प्रकार के कर्म करने की योग्यता न हो। डॉक्टर का पुत्र है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बांध के रखा है, क्या करेगी उसको? पुत्र या कन्या चलाएगी उसको? इसलिए ऐसा जन्म के अनुसार ही व्यक्ति को उस प्रकार का वर्ण प्राप्त होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं। इसीलिए संसार में भ्रष्टाचार और अज्ञान फैल रहा है, क्योंकि व्यक्ति योग्यता किसको देता है? वो सोचते कह रहे हैं जन्म से तो वो फलाना ढिकाना है, और कर्म से क्या है? इसलिए भयावह परिस्थिति निर्माण होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में अवगुण दिखाई पड़ता है, वह भी वास्तव में गुण है। अपने स्वभाव में, अपने स्वधर्म में यदि अवगुण दिखाई पड़ता है, किसी को अपने स्वधर्म में भी कोई ब्राह्मण है मान लो, परंतु उसको अपने धर्म में अवगुण दिखाई पड़ रहा है, तो भी भगवान क्या कह रहे सुनिए, तो भी क्या है, वह वास्तव में गुण है। कोई ब्राह्मण पुत्र है वो ये सोचता है क्या ये ब्राह्मण का कर्म है, दिन रात यहां जाओ वहां जाओ बड़बड़ करो, लोग कोई कीमत करते नहीं, लोगों को किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या धरा है आजकल, कौन पूछता है ब्राह्मण क्या कर्म है ब्राह्मण का? आज एडवांस जनरेशन ऐसी सोचती है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। परंतु भगवान यह कहते हैं कि यदि अपने धर्म में अवगुण भी दिखाई दे रहा है तो भी वो गुण है। कैसे? उदाहरण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा श्रीमद् भागवतम के, प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं, कभी कभी उनके अंदर कुछ अवगुण भी होते हैं, धर्म में अवगुण भी होते हैं, परंतु फिर भी कुछ गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, कोयल सब जानते हैं, कोयल दिखने को कैसी है, काली है, लेकिन वाणी कितनी सुंदर है। अब कोयल ये बोलेगी क्या वाणी भले सुंदर है कितनी काली हो, मुझे तो हंस के जैसा बनना है, इसलिए जो अपने शरीर को पत्थर पे रगड़ते बैठी, सफेद होगा शरीर, उसका जो अवगुण है कालापन, वो भी गुण है, वो अवगुण भी उसके लिए गुण है, ऐसे चाणक्य नीति में कहा गया। कोई व्यक्ति एकदम कुरूप है, देखते से भय डर लगेगा, ऐसे कुरूप व्यक्ति है, परंतु आत्मज्ञान है, ज्ञानी पंडित है। कोई व्यक्ति दिखने में कुरूप है परंतु पंडित है, तो उसकी कुरूपता भले ही ठीक समाज के लिए भौतिक स्तर पे है, कोई कहे कि ये तो क्या ठीक बात नहीं है, परंतु वो भी उसके लिए गुण है। जैसे कोयल काली है परंतु वाणी उसकी इतनी सुंदर है, वो यदि सोचे कि अभी क्या वाणी करते हैं, वाणी का क्या, वाणी में क्या धरा हुआ है, यदि वो पंडित व्यक्ति सोचे क्या पंडिताई का क्या धरा हुआ है, ज्ञान की क्या कीमत है, मैं कितना क्रूर दिखता हूं, छोड़ो इस ज्ञान को क्या धरा है, ज्ञान में पहले मैं सुंदरता को प्राप्त करता हूं। तो प्राप्त होगी नहीं होगी, उल्टा क्या हो जाएगा, उसका जो पंडिताई जो विद्वत्ता है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे कोयल यदि सफेद बनने का प्रयास करेगी घिसते बैठेगी तो ऐसा समय आएगा कि पूरा शरीर रक्त से छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा, और फिर गाना भी नहीं सुझेगा, सुझेगा गाना, जो गुण था वो भी चला जाएगा। तो इसलिए स्वधर्म में कुछ अवगुण यदि दिखते हैं तो भी वे गुण हैं। वो अवगुण है ही स्वधर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण, अतः कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत होना, ये क्या है, स्वधर्म है, अपना प्रत्येक जीव का धर्म है, बी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होना, ये हमारा धर्म है, और इसमें एक भी अवगुण नहीं, कितनी बड़ी बात है, इसमें एक भी अवगुण नहीं है। लेकिन कई बार कई लोगों को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, किसी को तिलक लगाने में शर्म आती है, किसी को कंठी पहनने में शर्म आती है, किसी को हाथ में माला झोली लेने में शर्म आती है, क्योंकि ये अवगुण लगते हैं। देखा है हमने बहुत बार, है कि नहीं फैक्ट, अरे क्या क्या कंठी पहने, सौ लोग पूछेंगे, अरे तिलक सबसे अलग दिखेंगे क्या, सबके साथ चलो, ये अवगुण नहीं है, गुण है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव, धर्म नहीं, स्वधर्म नहीं, क्या है स्वभाव, वो क्या करते हैं, स्वभाव के अनुसार चलते हैं। स्वभाव क्या है, अच्छा लगना और बुरा लगना, बस ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्वधर्म क्या कह रहा है, एवरीथिंग इज गुड, ये करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होने का तरीका है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, पुरुष व्यक्ति भी अपनी विद्वत्ता के कारण सुंदर दिखता है, सुंदरता को प्राप्त करता है, काली कोयल भी अपने वाणी के कारण सुंदरता को प्राप्त करती है, इसी प्रकार से व्यक्ति अपने स्वधर्म के कारण, ये ऐसे गुणों के कारण सुंदर बनता है। हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान अर्जुन को ये सब कुछ कह रहे हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है ये सब कहने का, अभी युद्ध होने जा रहा है, इतनी बड़ी बातें भगवान अर्जुन को कह रही है, तो क्या उद्देश्य है, तो भगवान का उद्देश्य है, भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें अपने स्वधर्म में कोई अवगुण भी दिखाई देता हो, तो तथा पर धर्म में कुछ गुण भी दिखाई देते हो तो भी पर धर्म की तुलना में स्वधर्म श्रेय अर्थात कल्याणकारी है और कल्याण की दृष्टि से भी देखे तो स्वधर्म सर्वाधिक गुण संपन्न भी है। अब अर्जुन को यह बात समझा रहे और भगवान अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, यदि तुम्हें अपने स्वधर्म में कोई अवगुण भी दिखाई दे रहा हो, अब मुझे ये बात बताइए अर्जुन को स्वधर्म में कौन सा अवगुण दिख रहा है? अर्जुन को अपने स्वधर्म में दो विगुण अवगुण दिख रहे हैं। कौन से दो? पहला, ये जो सारा राज्य मुझे प्राप्त करना है ये राज्य मैं अपने सुख के लिए प्राप्त करना है, अर्थात यह जो युद्ध है अपने राज्य सुख को भोगने के लिए प्राप्त करना, यह लोभ है, अर्थात यह युद्ध में लोभ के कारण करना। स्वधर्म में अर्जुन को क्या दिख रहा है? ये एक तो लोभ दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? अरे मेरे सारे लोग मारे जाएंगे, मेरे अपने लोग, मेरे लोग मारे जाएंगे, अपने ही स्वजनों की हत्या कर देंगे। ये दो अवगुण अर्जुन को अपने स्वधर्म में दिख रहे हैं और भगवान ने क्या कहा है? अपने स्वधर्म में अवगुण भी हो, जैसे कोयल अवगुण भी हो तो भी पर धर्म से वो श्रेय है कल्याणकारी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
यद्यपि ये जो है ये जो विगुण अर्थात दोष, ये दोष नहीं है ऐसा देखा जाए, सुख का लोभ करना या युद्ध करना, युद्ध करना तो दोष है ही नहीं कदापि, अर्जुन में तो ये दोनों दोष है ही नहीं है, अर्जुन में ये दोनों दोष, यह दोनों दोष अर्जुन में कदापि नहीं, परंतु फिर भी अर्जुन को ये दोष दिखाई दे। क्या अर्जुन सुख युद्ध इसलिए करना चाहता है कि वो इंद्रप्रस्थ का राजा है, पूरा राजा बन जाए संपूर्ण ब्रह्मांड का? क्या वो स्वजनों को इसलिए मारना चाहता है कि वो किंग बने, वो राजा बने? दोनों दोष वास्तव में अर्जुन में है ही नहीं, परंतु उनको दिखाई पड़ता है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम्हारे स्वधर्म में ये दोनों गुण या दोनों विगुण न होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु फिर भी तुम्हारे स्वधर्म के लिए ये कल्याणकारी, तुमको दिखाई दे रहे लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी। ये भगवान यहां समझाने का अर्जुन को समझा रहे हैं। अब अर्जुन के मन में तो कुछ है ना, अर्जुन कोई ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति थोड़ी है, ज्ञानी व्यक्ति, परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए, गुरु से ज्ञान प्राप्त किए, वरिष्ठों से श्रेष्ठों से ज्ञान प्राप्त किए, शास्त्र के अनेक उदाहरण उनके समक्ष है। अर्जुन क्या सोच रहे होंगे इस समय? अर्जुन सोच रहे कि मैं जंगल में जाके भिक्षा मांग क्या करूंगा राज्य लेके, मुझे लोग थोड़ी है। परंतु भगवान कह रहे ये क्या है? परधर्म। अर्जुन के मन में यह बात क्यों आई हो? भिक्षा मांगनी या इन सब बातों को छोड़ देनी? क्योंकि अर्जुन ने भी कुछ शास्त्र पढ़े हैं, जमदग्नि आपको पता होगा, महर्षि जमदग्नि महर्षि जमद अग्नि की कथा श्रीमद भागवतम में आती है, तो वो क्या है, जमद अग्नि बहुत ही शक्तियां प्राप्त किए हुए महर्षि ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनके पास बहुत सारी योगिक शक्तियां थी और उन योगिक शक्तियों के साथ योगिक शक्तियों के कारण उनको कामधेनु प्राप्त हुई। क्या थी? एक गाय थी उनके पास, कामधेनु। कामधेनु का अर्थ क्या होता है? कोई भी काम करो, कामना करो, पूर्ण हो जाए। तो एक बार उनके पास एक राजा, उस क्षेत्र के राजा, उनका कार्तवीर्यार्जुन, कार्तवीर्यार्जुन के अनेक दूसरे भी नाम है। तो यह राजा एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और जैसे ही राजा आए, ये ब्राह्मण धर्म के अनुसार अतिथि का स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात, ये राजा है तो राजा अर्थात देव, देव रूप, राजा के अंदर सारे देव निवास करते हैं, तो राजा होते हैं उनके अंदर सारे देव निवास करते हैं। ये ब्राह्मण धर्म के अनुकूल इन्होंने उनकी बहुत ही आदर सत्कार किया, आदर किया, उनको योग्य आसन दिया और उनको पूछा कि क्या कर सकता हूँ आपके लिए इस प्रकार से। और उनकी जितनी भी सेना थी, उन सारी सेना को, सभी को एकदम सुंदर सुंदर प्रकार के मिष्ठान में भोजन, उनकी रहने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, सुंदर सुंदर कॉटेजेस, इतना सुंदर उन्होंने निर्माण किया। कैसे? कामधेनु तो है, कामधेनु के कारण ये सब उनको प्राप्त हुआ। और राजा की बहुत अच्छी खातिरदारी, बहुत अच्छी क्या कहते हैं, आगत स्वागत उनका किया। ये सब देख के राजा हैरान हो गया। राजा सोचने लगा, इतना तो ये मेरे यहाँ आए तो मैं भी इनका नहीं कर पाऊंगा। यदि ये जमदग्नि ऋषि मेरे महल में आ गए तो इतना आदर आतिथ्य, आदर और आतिथ्य मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये ऋषि होगी इतना कर रहे, आश्रम में रहने वाले ऋषि होगी इतना कर रहे, इनको ईर्ष्या हो जमदग्नि से। और ईर्ष्या के कारण इन्होंने कुछ नहीं दूसरा तीसरा सोचा, ना उनसे बात की, ना कुछ कहा, ना कुछ पूछा, सीधे सीधे क्या किया, कामधेनु को लिया, रस्सी खोली और सीधा ले जाने लगे। जमदग्नि ऋषि से कुछ बात भी नहीं कर, सीधा छीन के कामधेनु को ले जाने। जमदग्नि ऋषि ने पूछा, क्या आपका विचार है? तो उनसे ठीक से बात भी नहीं की और ये सब उनका लूट के लेके गए। जमदग्नि ऋषि बड़े सहनशील ब्राह्मण, ब्राह्मण स्वभाव, नौ धर्मों में से एक धर्म बड़ा सबसे महत्व का सहनशीलता, सहनशीलता। उन्होंने किया, ठीक है जाने, वो चले गए। कुछ समय के पश्चात उनके पुत्र आश्रम में आए, कौन? परशुराम। परशुराम जी आए, उनको जैसे ही पता चला वो तुरंत वापस चले गए। बड़े पराक्रमी थे, शूरवीर थे। और उन्होंने क्या किया, पूरी सेना के साथ उस राजा की हत्या कर, सबको, सेना के साथ सबको मार दिया। और फिर आश्रम पे आए जमदग्नि के पास, तो वो बड़े दुखी हुए। वो कहने, क्या जरूरत थी ये सब करने, वो राजा है उसके अनुसार उसको मिल रहा था, ठीक है, प्रजा का पालन कर रहा है, क्या आवश्यकता है सब करने। सहनशीलता का जो तेज ब्राह्मण के पास होता है वो सूर्य के तेज के समान होता है। जमदग्नि अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं, सूर्य की जो प्रभा होती है, सूर्य प्रभा के समान ब्राह्मण के पास तेज होता है, पर वो तेज किसका होता है? सहनशीलता का। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री जप करना चाहिए, करते हैं त्रिकाल संध्या, सूर्य का भी उसमें वर्णन होता है। तो उसके पास सहनशीलता रूपी शक्ति तेज प्रभा ब्राह्मण के पास होती है, पर आज आपने सहनशीलता नहीं दिखाई। भगवान परशुराम जी, ब्रह्मदेव भी उच्च कोटि के ब्राह्मण इसीलिए कहलाते हैं कि ये इतनी प्रकृति उन्होंने निर्माण की है और इसमें इतनी उथला पुथल होती है, इतने असुर क्या क्या करते हैं, इतने भ्रष्टाचारी लोग इस पृथ्वी पे और इस निर्मित के का मिसयूज करते हैं, लेकिन कितना सहन करते हैं, सहन करते हैं। नहीं तो तुरंत ये तो मेरी है, ये सब क्रिएशन, ये सारा निर्माण मैंने किया, भगवान ने मुझे इसका इंचार्ज बनाया है। आप जरा भी इधर उधर करो तुरंत ब्रह्मदेव आ जाएंगे, चतुर्भुज ब्रह्म सामने प्रकट, क्या कर रहे हो, तुरंत शिक्षा। ऐसा करते हैं, सहनशीलता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है संसार में सहनशीलता की शक्ति। इस प्रकार से जमदग्नि उनको समझाते हैं, परशुराम जी को कहते हैं कि आप जाओ, आप कहां जाओ, अभी तीर्थाटन करो, तीर्थ यात्राएं करो, प्रत्येक तीर्थ में जाके स्नान करो, तीर्थ प्राशन करो और अपने आप का अपना शुद्धिकरण। तुमने क्योंकि व्यर्थ ही राजा का वध किया है। अर्जुन को यह पता था, भागवत कथा तो अर्जुन ने भी सुन रखी थी ना, सारा शास्त्र अर्जुन जानते थे, इसलिए अर्जुन ये मन में सोच रहे जब जमदग्नि ने कुछ नहीं किया, इतनी काम देने वो राजा ले जा रहे हैं, जमदग्नि ने कुछ नहीं किया तो मुझे क्या करना है, मैं क्यों करूं। सही बात है। इस प्रकार से शास्त्र का ज्ञान होने के कारण अर्जुन कहते हैं भगवान भी श्री हरि भी यदि प्रसन्न होते हैं तो केवल एक गुण विशेषता, एक विशेष गुण के कारण, सहनशीलता। अर्जुन कहते श्री हरि भी प्रसन्न यदि होते हैं तो एक गुण की प्रधानता के कारण, ऐसे अनेक गुण है पर एक गुण की प्रधानता क्या है, सुख को सहन करो, दुख को सहन करो, कष्ट को सहन करो। सुख को भी सहन करते आना चाहिए, दुख को भी सहन करते। दुख को सहन करना आसान है, सुख को सहन करना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
दूसरे पंक्ति में भगवान कहते हैं, पहले पंक्ति में क्या कहा है भगवान ने, पहले पंक्ति में कहा है श्रेयान सुधर्मो विगुण पर धर्मा अनुतिष्ठता। पहले पंक्ति में क्या कहा है, विधि कहा है। पहले पंक्ति में भगवान ने विधि का वर्णन किया है और दूसरे पंक्ति में भगवान निषेध का वर्णन किया। निषेध क्या है, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। यह है कि स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है परंतु पर धर्म में, पर धर्म भयानक। हमने कई बार शास्त्रों में सुना है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म स्वधर्म वो क्या करता है, जो स्वधर्म का पालन करता है वो स्वधर्म, वो धर्म उसकी रक्षा, जो स्वधर्म का पालन करता नहीं वो धर्म क्या उसकी रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, खुद ही पालन नहीं करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, युद्ध करते हुए प्राण भी चला जाए तो प्राण का भी त्याग करें, श्रेय प्राप्ति की। यहां चर्चा श्रेय की हो रही है, श्रेय का क्या अर्थ है, प्रेय अर्थात मन को प्रिय, अर्थात क्या है, शॉर्ट टर्म गेम, मैंने बताया था पहले, शॉर्ट टर्म गेम। प्रेय अर्थात लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम अर्थात ये ऐसा एटीएम कार्ड है, कोई भी वर्ल्ड में चले जाओ ऊपर के नीचे के कोई भी वर्ड में जाओ ये एटीएम कार्ड चलता है, है ना। कहीं भी जाइए जैसा वीजा मास्टर कार्ड होता है, अमेरिका में जाए तो भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो भी चलता है, अफ्रीका में गए तो भी चलता है। ऐसा ये श्रेय नाम का एक कार्ड है, ये ब्रह्मलोक तपोलोक महरलोक कहीं भी जाओ, वैकुंठ कहीं भी जाओ, नीचे भी गए तो भी ये कार्ड चलता है, आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। क्या विड्रॉ कर सकते हैं? मर्सी, एटीएम, ऑल टाइम मर्सी, ऑल टाइम मर्सी। ये कार्ड श्रेय, श्रेय अर्थात जैसे बालक के, इसकी चर्चा हो चुकी है, एक छोटा बालक है उसके सामने आपने दो ऑप्शन रखे, एक श्रेय और एक प्रेय, जैसे एक चॉकलेट और एक 1000 रुपए का नोट। बालक क्या लेगा? क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म गेम दिख रहा है, उसको लग रहा है अभी तुरंत चॉकलेट खाऊंगा क्या मजा आ जाएगी, आई कैन एंजॉय द टेस्ट, स्वाद का आनंद लूंगा। और जो ज्ञानी है जिसको थोड़ा ज्ञान है वो क्या करेगा, 1000 रुपए मिल जाए तो उसमें इतने चॉकलेट आ जाएंगे जीवन भर पूरे। ऐसे श्रेय और प्रेय, ऐसे कर्म हम करते हैं शॉर्ट टर्म गेन लेने वाले। अभी कहें कि अरे प्याज लहसुन मत खाइए, पर अभी कितना आनंद आता है उसमें खाने में, स्वाद में कितना आनंद है, हा? पर यदि नहीं खाते हैं तो नहीं खाने से जो श्रेय मिल रहा है, जो प्राप्त हो रही है सहन शक्ति, जो प्राप्त हो रही है दूसरी शक्तियां, सात्विक शक्ति, सात्विक गुण का जो प्रभाव बढ़ेगा, उससे जो लाभ है वो इतना ज्यादा है कि आपको कई जन्म जन्मांतर तक उसका संस्कार हमारे मन में रहेगा, जन्म जन्मांतर तक उसका संस्कार रहेगा मन पर। अभी नहीं, अभी जितने भी हमारे 50-60 साल 20 साल 40 साल 50 100 साल जितने वो तो अभी का स्वाद हो गया, परंतु श्रेय अर्थात ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे तो केवल यही जीवन का विचार नहीं, सारे जीवन का विचार जिसमें किया जाता है उसको श्रेय कहते हैं, और अभी का जिसमें विचार किया जाता है उसको प्रेय कहते हैं। और इसलिए अर्जुन ने भी जब प्रश्न पूछा था तो क्या पूछा था, कार्पण्य दोष कृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्रेय श्याम, निश्चित तौर के कर्म, ऐसे निश्चित कर्म बताओ जिससे श्रेय की प्राप्ति। अर्जुन तुमने भी ये प्रश्न पूछा था, है ना, और तुम ही बोल रहे हो कि इसमें अवगुण दिख रहे हैं धर्म में, और स्वधर्म ही तो श्रेय की प्राप्ति तक ले जाता है, स्वधर्म ही श्रेय की प्राप्ति तक। ये एटीएम कार्ड स्वधर्म के कारण ही मिलता है, जिसके जो स्वधर्म का पालन करता है उसको एटीएम मिल जाएगा, तो स्वधर्म का पालन नहीं करता है उसको भया, तो पर धर्म का पालन करता है। तो इसलिए हम कई उदाहरण शास्त्र में ऐसे हैं जो पर धर्म का पालन किए और भयावह स्थिति में आ गए। आप एक उदाहरण को सब जानते हैं, महाभारत का कौन सा उदाहरण मिलता है, पर धर्म भयावह लेकिन फिर भी स्वीकार, महाभारत तो एक प्रकार का राग और द्वेष है, तो राग है, प्रीति है, प्रिय है, कर्ण, कर्ण कर्ण है कि नहीं, कैसे जब भगवान परशुराम के पास गुरु के पास वो गए ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के, तो परशुराम की एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, वो ब्राह्मण को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देंगे, दूसरे को ज्ञान नहीं देंगे। और क्षत्रिय कैसे तो पहले से ही उन्नत थी तो क्षत्रिय को तो नहीं देंगे। तो ब्राह्मण के अलावा ब्राह्मण के व्यतिरिक्त किसी को नहीं देंगे। और कर्म को ये ज्ञान चाहिए, ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता थी कर्म। इसलिए कर्ण उनके पास गए, परशुराम जी के पास, क्या बन के गए? ब्राह्मण। और परशुराम जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। परंतु कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें ये सिद्ध हो गया कि ये तो इनके पास क्षत्रिय का गुण है, क्षत्रिय का गुण, रक्षा, रक्षण करना। मेरे गुरु का मैं रक्षण कर रहा हूं। ब्राह्मण होता तो क्या करता? उस कीड़े को तुरंत गुरु को उठाता या कीड़े को भगा देता, मारता नहीं था परंतु कीड़े को। और ये क्षत्रिय का यह था कि मेरे गुरु के ऊपर एक कीड़ा आक्रमण करेगा, मेरे गुरु की मैं रक्षा करूंगा। बनने क्या गए? दूसरा धर्म स्वीकार करने का प्रयास है। कौन सा धर्म? ब्राह्मण का धर्म स्वीकार। गड़बड़ हो गई, फंस गए। दूसरा पर धर्म स्वीकार करने के चक्कर में ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि परशुराम जी ने ऐसा श्राप दे दिया। कैसा? उन्होंने कहा, मैंने जो ज्ञान दिया उसकी जब आवश्यकता होगी, नितांत आवश्यकता होगी, उसी समय तुम उसको भूल जाओ। और कितनी भयावह स्थिति निर्माण होगी उसके कारण। पर धर्म का इस प्रकार से स्वीकार करने से व्यक्ति का संग भी बिगड़ जाता है। ऐसे कर्म का संग भी बिगड़ गया। ऐसे शास्त्र में मथुराखंड में दूसरा एक उदाहरण आता है, गर्ग संहिता में। ये जो चाणूर वंश के साथ बड़े भयंकर मुष्टि युद्ध करने वाले, जानते हैं ना, चाणूर फाइटर थे, बॉक्सिंग फाइटर, क्या कहते हैं आजकल उनको, रेसलर नहीं, कुछ एक विशेष नाम था उनका, बीच में कुछ विशेष नाम से पुकार देने में भूल गया आजकल, हाँ उसमें क्या नाम कुछ तो बोल दो। तो ये चाणूर इतना बड़ा भयंकर, स्वर्ग लोक में ब्रह्मर्षि थे उत्तत मुनि। ये उत्तत मुनि के पांच पुत्र थे ये चाणूर आदि इत्यादि से। ये चाणूर जो है ये उन उत्तत मुनि का पुत्र था, और उत्तत मुनि वेद व्यासंगी, प्रचंड ज्ञानी, शुद्ध ब्राह्मण। और उनकी पूरी मन की इच्छा थी कि ये मेरे पुत्र है, ये भी ब्रह्म कर्म करे, ब्राह्मणत्व का पालन करते हुए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे, ये उनकी इच्छा थी। परंतु ये जो चाणूर था ना, बड़ा बदमाश था, उसको रेसलिंग में ज्यादा मजा आती थी, और वो इस प्रकार से उपद्रवी था कि जहां जाए वहां रेसलिंग, फाइटिंग कर, आश्रम में उथला पुथल कर दे, इस प्रकार से सब। तो उत्तत मुनि अर्थात पिता ने ही अपने पुत्र को श्राप दे दिया। उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम है ना ये रेसलर बन जाओ जाओ तुम इस प्रकार से मुष्टि युद्ध करने के लिए ही पृथ्वी लोक पे जन्म लो, जाओ। और इतना ही नहीं, तुमको इतना भयंकर कर्म करना पड़ेगा कि तुम नित्य लिप्त रहो राक्षसी प्रवृत्तियों में, और इसके कारण तुमको राक्षसों का संग प्राप्त हो। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। अब इनको क्यों श्राप मिला? चाणूर क्योंकि पर धर्म भया। इस कलयुग में असल में मेरा यह प्रश्न है, ये सब तो भयावह हो गया, हम सबके लिए सबसे भयावह क्या है? एकदम एक वाक्य में अभी ये श्लोक का सार करते हैं। एक वाक्य में पूरा श्लोक, दो वाक्य में आप बताइए। परधर्म भयावह, स्वधर्म श्रेय, स्वधर्म श्रेय, परधर्म भयावह। अब ये दो वाक्य के आधार पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो सेंटेंस में बताइए। कृष्ण गृहित जीव। सो स्वधर्म श्रेय और स्वधर्म क्या है? जीवेद स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, अर्थात स्वरूप क्या है, स्वधर्म क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस, बरोबर है। और भयावह क्या है? कृष्ण विस्मरण, अर्थात ये सब जो आप कह रहे हैं भयावह ही। अब ये भयावह क्यों आता है? विस्मरण क्यों होता है, क्यों अपसेस? क्योंकि संग खराब है, इसलिए हमको ये श्लोक दो बातें सिखाना है, स्वधर्म श्रेय अर्थात कल्याणकारी, परधर्म भयावह। परधर्म हमारे पास, हमारे ऊपर अटैक करेगा तभी जब हमारा संग बिगड़ जाएगा। तो सबसे भयावह हमारे लिए क्या बात है? कुसंग। और सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए क्या बात है? सत्संग। सो ओनली टू थिंग्स, भगवान अर्जुन को इस श्लोक में यही कह रहे हैं, सत्संग से श्रेय की प्राप्ति होती है, कुसंग से भयानक परिस्थिति निर्माण होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की एक प्रश्न पूछ सकते हैं नेक्स्ट श्लोक से, अर्जुन की क्वेरी शुरू हो रही है। अर्जुन ने कहा, फिर अर्जुन, अभी तक तो भगवान कहे थे, बहुत कुछ सुना अर्जुन ने, अभी देखिए क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट सेक्शन है इस अध्याय, इस अध्याय का लास्ट सेक्शन। लेकिन मेरी हृदय से प्रार्थना है सभी को कि जो अभी तक हुआ है, विशेषकर ये जो सेक्शन हमारा हुआ है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत समय लगा इसको, लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप उसको रिवाइज कीजिए। मैं खुद भी करता हूं, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिर से पढ़ता हूं, फिर से समझता हूं, फिर से पढ़ता हूं, फिर से समझता हूं, जो कुछ भी हुआ है उसको रिवाइज करें। तो हम तो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे क्या है, क्या हुआ है पता ही नहीं चला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तीन श्लोक, एक्चुअली आज के श्लोक में पहले दोनों श्लोक का सार है। पहले भगवान ने क्या कहा, 33 में क्या कहा, 34 में क्या कहा, 35 में। यदि हमारा किसी का ध्यान नहीं होगा तो हमको एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक लगेंगे, 34 और 35 एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक लगे। और इसी के कारण लोग भगवत गीता के विपरीत अर्थ निकालते हैं और हमेशा नित्य क्या करते हैं, केवल डिबेट करते हैं, आचरण कुछ नहीं करते। परंतु प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन से, प्रभुपाद जी की हमको सीख है, प्रभुपाद जी का आदेश है कि ये सब आचरण के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें शास्त्र में कहता है, भागवतम में भी कहा है, कलो क्षूद्र संभव, कलयुग में सबकी प्रवृत्ति क्षूद्र जैसी है। क्योंकि मन जो है ना, आप एक थोड़ा सतयुग में और द्वापर युग में क्या होता था आपको पता है? सतयुग में और द्वापर युग में खराब कर्म करने से पाप होते थे और वो पाप के फल मिलते थे, और उसके साथ साथ खराब विचार करने से भी, यदि खराब विचार भी मन में आया तो उसका पाप फल मिल जाएगा। अभी हम लोग तो वैसे भी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में कलयुग के जीव। तो भगवान ने यहां पे एक फैसिलिटी दी है, क्या फैसिलिटी दी है? जो मानसिक मन में जो विचार, कितने भी पापी विचार आते हैं तो भी उसका पाप का फल आपको नहीं मिलेगा कलयुग में। क्योंकि कलयुग का जो मन है वो एकदम शुद्ध है, एकदम क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है, अस्थिर है, वीक है, मंद है, सब कुछ है उसको। ये सब अवगुण कलयुग के मन में। और हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम मनमानी करते हैं। ये दुर्दशा है, मन को जो मन जो मानता है वही हम करते हैं, तो मन की बातें हम ये करते हैं। इसलिए ये जो स्वभाव है, ये जो गुण है, इंद्रिय निग्रह, मन को स्थिर करना, मन को नियंत्रित करना, ये ब्राह्मण का कर्म है। मन की डिमांड्स को सहन करना, ये ब्रह्म कर्म है। मन की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है, तुच्छ कर्म है। सेटिस्फाई करने के लिए जीवन, पूरा जीवन व्यतीत कर देना है तो महाशूद्र कर्म है। इसलिए भागवतम में भी कहा गया है कि क्योंकि ये जीव मन के पीछे जाएगा, भाव के पीछे जाएगा, राग और द्वेष के पीछे जाएगा, सिद्धांत के अनुसार नहीं जाएगा, स्वधर्म के अनुसार नहीं जाएगा, तो क्या होगा, शुद्ध के स्तर पर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऑल्दो ये सब कुछ यद्यपि ठीक है, परंतु यदि कोई कृष्ण को नित्य केंद्र में रखते हुए सेवा भाव करता है, सत्संग जाता है और भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान देता है, तो वो वैष्णव है जो ब्राह्मण से विशेष है। तीन बातें हैं शास्त्र कहते हैं, कौन सी तीन बातें हैं? चैतन्य तत्व क्या है, चैतन्य तत्व सिद्धांत, तीन बातें मैंने कितनी बार में बताया, इसको कभी भूलना नहीं। बोलिए, नाम रुचि, जीव दया, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, ये तीन बातें। यदि ये तीन बातें हैं तो हम ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं। यदि ये नहीं है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। परंतु ये नहीं है तो इमीडिएट हम क्या है, यदि ये नहीं है तो इमीडिएट डिमोशन कहां होता है, बीच की कोई दशा, कोई स्थिति नहीं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मन मानी करे तो शूद्र है, और मन का निग्रह करे तो वैष्णव है। तो हम कौन है, हमको डिसाइड करना है। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण,
ठीक है। हाँ सुनिए,
जैसे मेरे अंदर कुछ अलग थे, जैसे यहाँ पे कहा गया कि हमारे अंदर अलग थे वो भी कल्याणकारी थे, यानी उसको अच्छा कहा गया है, वो कैसे अच्छा, वो समझ लिया।
अनर्थ को अच्छा तुलना में कहा गया है,
किसकी तुलना,
पर धर्म के, दूसरे धर्म के। जैसे कर्ण जो है, उदाहरण के तौर पे कर्ण जो है क्या था, क्षत्रिय था, उसको पता नहीं था, तो वो क्या हो रहा था, सूत पुत्र था, एक्चुअली क्षत्रिय था, परंतु संसार को और उनको भी क्या पता था, वो सूत पुत्र, तो उसका धर्म क्या हुआ, सूत पुत्र। परंतु इसने प्रयास क्या किया, ब्राह्मण का धर्म लेने का, या क्षत्रिय समझे उसे, क्षत्रिय था वो ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, सूत पुत्र था ब्राह्मण बनने का। यदि वो सूत ही रहता, भले ही सूत होना ब्राह्मण की इतना श्रेष्ठ नहीं है, उस समय जैसी वर्णों की रचना है उसके अनुसार वैसा नहीं है, परंतु उसमें भी यदि वो रहता तो भी चलता, क्योंकि ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म करने गया, ब्राह्मण बनने गया तो दुर्योधन का संग। यदि वो सूत रहता या क्षत्रिय का ही पालन करता और ब्रह्मास्त्र को नहीं लेता तो उसको दुर्योधन का संग नहीं मिलता, और यदि उसको दुर्योधन का संग नहीं मिलता, भले ही वो एक प्रकार से कहा गया सूत होना उस समय अवगुण जैसी बात है, कंपैरेटिवली या विगुण है। जैसे मान लो कोई कोई भक्त है, बहुत सारा एक अनर्थ है, जल्दी उठते ही नहीं, जल्दी नहीं उठते, इतना बोला गया सुनो दे के सब पहले उठो उठो उठो, लेकिन 10 बजे उठते, 9 बजे उठते, 10 बजे उठते, क्योंकि रात को लेट सोना, रात को लेट सोना एकदम अवगुण,
अवगुण है, अनर्थ है। लेकिन रात को 10 बजे क्यों सोते हैं, रात को 12 बजे क्यों सोते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो दास भाव में रहते हुए सारे एरिया में या वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस सारे क्षेत्र में लोगों को क्या प्रदान करते हैं? जो भगवान को सबसे प्रिय है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं किसी भी कारण, या लोगों को रात को 11 बजे तक प्रसाद खिलाते हैं, या जैसे तैसे कृष्ण कथा में भाग लेते हैं। ये सब कुछ बातें ये धर्म है। लेकिन अवगुण क्या है? 12 बजे तक जग रहे, लेट उठ रहे, बोल रहे, भगवान कहते वो चलेगा। परंतु 12 बजे तक जाकर आप जप करते हो, प्रचार करते हो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अभी भगवदगीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेशन स्टेशन पे जाके रात के 12 बजे तक भगवदगीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और सुबह 9-10 बजे उठते हो, चलेगा। लेकिन रात को 10 बजे सोते हो, बढ़िया सुंदर 6-9 सिनेमा देख के थिएटर में घर पे आते हो और 9 बजे सोते हो, ये तुम्हारा धर्म थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है सुबह आप 5 बजे भी उठ गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। 5 बजे उठे, जिम में गए, एक्सरसाइज किए, सब कुछ ये पर धर्म है। स्वधर्म में गड़बड़ हो रही है, अनर्थ आ रहा है क्या? सुबह लेट में उठना हो रहा है, परंतु वो ये पर धर्म से वो श्रेष्ठ है। मेरे में अनर्थ है, गड़बड़िया है, परंतु मेरा मूल धर्म क्या है उसका मैं पालन कर रहा हूं क्या? मूल धर्म का मैं पालन कर रहा हूं तो अनर्थ भी ठीक है, ऐसे भगवान। और मूल धर्म क्या है फिर से बार बार कह रहे हैं, कृष्णेर सेवा, कृष्णेर नित्य दास। और भगवान आगे कहेंगे और भी कहते हैं, ये दास्यत्व को स्वीकार करने की मति इच्छा मति हमको मिले, इसलिए भगवान कहते मैंने आपको बुद्धि भी दी है। बुद्धि किस लिए दी है? ये स्वधर्म को समझने के लिए बुद्धि दी है। ये समझते हुए कुछ अनर्थ भी आपके साथ आ जाते हैं तो डोंट वरी, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पहले अनर्थ कर लो बहुत सारे फिर स्वधर्म का सोचेंगे। भगवान क्या कह रहे, पहले स्वधर्म। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे अनर्थ कर लेते हैं, बाद में समय थोड़ा बहुत मिला तो स्वधर्म का पालन नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।